अगर मुहूर्त भर भी देख लेते हैं कि सड़िमानी मनसंधि मुहूर्तम अनवेक्षणात् गावा सेवा कृषि भार्या विद्या विसले संगति। ये छह प्रायः अपने उपकारी का सम्मान नहीं करते, छह लोग अपने उपकारी का सम्मान नहीं करते। शिक्षा समाप्त होने पर शिष्य आचार्य का सम्मान नहीं करता, विवाहित बेटे माता का सम्मान नहीं करते, काम वासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का, अकृत कार्य मनुष्य सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले मनुष्य नाव का। अब नाव का कौन सम्मान करेगा, नदी की धारा पार कर ली तो नाव का क्या सम्मान कर। और रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का सम्मान नहीं करते। निरोग रहना, ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीव का चलाना और निर्भय होकर रहना, ये छह मनुष्य लोक के सुख हैं, छह प्रकार के सुख। बहुत बढ़िया होता है। पहला सुख निरोग रहना, दूसरा ऋणी ना होना, कोई कर्ज ना हो, तीसरा परदेश में ना रहना, चौथा अच्छे लोगों के साथ मेल होना, और पांचवा अपनी वृत्ति से जीव का चलाना, और छठवा निर्भय होकर रहना। आरोग्यमान निर्णयम अभिप्रवास सद्भिर मनुष्य ऐसा संप्रयोग स्वप्रत्यया प्रति रभीते सुखानि राजन। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संकित रहने वाला, दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये छह सदा दुखी रहते हैं। छह लोग हमेशा दुखी रहते हैं। पहला ईर्ष्या करने वाला, दूसरा घृणा करने वाला, तीसरा असंतोषी, चौथा क्रोधी, पांचवा सदा संकित रहने वाला, और छठा दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये सदा दुखी रहते हैं। ईर्ष्ये घृणे न संतुष्टः क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपि जीवी चा सडेते नित्य दुखिता। स्त्री की आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये सात दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे राजा नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य की आठ पूर्व चिन्ह हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य की आठ पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, फिर ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है, यज्ञ में उनका स्मरण नहीं करता, और कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे। राजन, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में संलग्न होना, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये आठ हर्ष के सार दिखाई देते हैं और अपने लौकिक सुख के भी साधन हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक ना बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये आठ गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष नौ दरवाजे वाले और तीन खंभ वाले और पांच साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान शरीर रूपी गृह को तत्व से जानता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये शरीर जो है आत्मा का घर है ना, तो इस घर के जो है नौ दरवाजे हैं, इसको जानो, और तीन खंभे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन खंभे हैं, पांच साक्षी हैं, ज्ञान इंद्रियां, और हाँ ये घर। महाराज, दस प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये दस हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्त ना होए। इसी विषय में असुरों के राजा प्रह्लाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीति के लोग उस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है उसको सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को जो दंड देता है, जो दंड देने की मात्रा और क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध प्रसन्न नहीं करता और समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है, धीर पुरुष। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। अच्छा, जो घर छोड़कर निरर्थक विदेश वास करता है, बिना मतलब में विदेश में वास करता है, पापियों से मेल करता है, पर स्त्री गमन करता है, पाखंड, चोरी, जुगलखोरी और मदिरापान, इन सब का सेवन नहीं करता, अच्छा हाँ ये सब दुर्गुण सेवन नहीं करता, वो सदा सुखी रहता है ना। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म अर्थ काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर ना पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, असमर्थ होते हुए किसी की जमानत नहीं लेता, बढ़कर नहीं बोलता, विवाद को सह लेता है, ऐसा मन सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की प्रशंसा नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, दुश्मनी की आग अगर जा रहे हैं, अच्छा नहीं तो मैं अध्याय पूरा करता हूँ, तो अध्याय पूरा। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वो सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। कितना अच्छा होता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, अवसर और जातियों के धर्मों को तत्व से जानना चाहता है, उसे उत्तम अधर्म का विवेक हो जाता है, वो जहाँ कहीं भी जाता है सदा महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप, राजद्रोह, चुगलखोरी और पागल दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वो श्रेष्ठ है। विवाद ना करें ना। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित और अनेक प्रकार के आचार, इन नित्य किए जाने वाले योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग भी उसकी सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार और बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ नीति है। जो अपने आश्रित जनों को बांट कर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है और मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है, उस मनुष्य पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता है। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को शांति प्रदान करने में तत्पर है, सत्यवादी है, कोमल है, दूसरों को आदर देता है और पवित्र विचार वाला होता है, वो अच्छी खान से निकले चमकते रत्न की भांति प्रसिद्ध होता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील, वो सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वो सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वो अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय और एकाग्रता से युक्त होने के कारण सूर्य के समान शोभा पाता है। राजन, साप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, साप से जो जिनकी मृत्यु हुई ना, महाराज पांडु की वन में मृत्यु हुई, उनके 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं, उन्हें आपने बचपन से ही पाला, शिक्षा दी, वे भी आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। उन्हें उनका न्यायोचित राजभाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित होते हुए सुख भोगी, आपको क्या दिक्कत है? ऐसा करने पर आप देवताओं और मनुष्यों की आलोचना के विषय नहीं रह जाएंगे, ना तो देवता आपकी निंदा करेंगे ना मनुष्य आपकी निंदा करेंगे। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुर नीति वाक्य 33 अध्याय, 33वां अध्याय पूरा हुआ ये उद्योग पर्व का 33वां अध्याय। आज कोई कथा हुई ही नहीं, जबकि हमेशा कथा होती है। अब पता नहीं आप लोगों के जो है भाग्य में यही था कि भाई कुछ
शिक्षाएं
नहीं, सरल तो हमें फिर वो मुझे बोलना पड़ता है, तो बहुत से शब्द हैं जो सरल नहीं है, तो मैं छोड़ करके बोलता हूँ, कुछ बदल करके बोलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। इनको सुना रहे हैं ना, तो उसी क्रम में मैंने सुनाया है।
ये हमेशा हटाकर सुना
नहीं, सुना प्रार्थना अच्छो ज्ञान की प्राप्ति का पूरा दुनिया।
और ये माता जी और है ना, ये रेगुलर डाओ प्रभु जी का, नहीं ये कुछ
पर मीडियम से भाग्य में अच्छे वर्ड्स मिले, दिमाग में बैठने के 10 ये बार 5 के अच्छे से प्राप्त हुई।
ठीक है, अब आप लोग प्रसाद दो, क्योंकि फिर देर हो जाएगी ना, तो प्रसाद नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग प्रसाद लीजिए।
ये भागवत है अपने पास,
5:18 हो गए हैं, तो आप लोग जो है, मैं भी अब जा रहा हूँ।
मैं भी
हरी बोल हुआ है, एक अध्याय में कैसा सुना देता हूँ फिर पिछली
जो लेके आते हैं ना आगे, कोई भी जो संदेश लेके आते हैं।
अच्छा अच्छा,
मतलब उत्सुकता हो रही है उसके, वो किस तरह से बोलेंगे
संजय। अच्छा, उद्योग पर में नहीं, मैं जो है ना कृष्ण का कथन बताऊंगा, बहुत बढ़िया है कि जब पहले का अध्याय है जहाँ की संजय यहाँ आए थे, उपप्लव्य नगर में आए थे, और उन्होंने जो है युधिष्ठिर को समझाया कि आप पाप मत करो और आप तो धर्मात्मा हो, आप युद्ध छोड़ दो, आप भिक्षा वृत्ति से निर्वाह कर लो, जंगल में रह करके अपना जीवन यापन कर लो, युद्ध करना पाप है, मत करो युद्ध है। हाँ, तो युधिष्ठिर ने भी अच्छा जवाब दिया था, हाँ कि पाप कर्म तुम जो हमें जो सिखा रहे हो, तो हम जानते हैं पाप क्या है और पुण्य क्या है, सब समझाया उन्होंने, है ना। अब फिर युधिष्ठिर ने कहा कि अब मेरे तो कृष्ण ही सबसे बड़े विद्वान हैं और यही सबसे हमारे आश्रय हैं, तो वो जो निर्णय करेंगे हम तो वो करेंगे। तो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं संजय को, तो उनका कथन सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना चाहता हूँ और उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र का भी उनके पुत्रों के साथ चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, हाँ जैसे युधिष्ठिर और पांडवों का चाहता हूँ, उसी प्रकार से राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों का भी चाहता हूँ। मेरी भी सदैव यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, कुंती कुमारों कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहो। इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता हूँ। राजा युधिष्ठिर के मुँह से भी ऐसा ही प्रियवचन सुनता हूँ और स्वयं भी इसी को ठीक मानता हूँ। संजय, जैसा कि युधिष्ठिर ने प्रकट किया, राज्य के प्रश्नों को लेकर दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, ये बहुत मुश्किल जान पड़ता है। पुत्रों से धृतराष्ट्र जिस राज में आसक्त होकर उसे लेने की इच्छा करते हैं, उसके लिए इन कौरव पांडवों में कलह क्यों नहीं बढ़ेगा? हम मिल कैसे हो सकता है? संजय, तुम इसी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी जो उत्साहपूर्वक सुधर्म का पालन करते हैं और शास्त्रों में जैसा बताया गया उसके अनुसार ही कुटुंब में रहते हैं, उन्हीं युधिष्ठिर के धर्म लोक की चर्चा या आशंका तुमने किस आधार पर की है कि तुम युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे हो कि धर्म का लोप हो रहा है तुम्हारा? गृहस्थ आश्रम में रहने की जो विधि है, उसके होते ही भी इनके ग्रहण अथवा त्याग के विषय में ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कोई तो कर्मयोग के द्वारा परलोक में सिद्धि लाभ होने की बात बताते हैं, दूसरे लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा सिद्धि की बात बताते हैं। विद्वान पुरुष भी इस जगत में भक्ष्य भोज्य पदार्थों को भोजन किए बिना तृप्त नहीं हो सकता, अतएव विद्वान ब्राह्मण के लिए भी भूख मिटाने के लिए भोजन करने का विधान है। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं उन्हीं का फल दिखाई देता है, दूसरे विद्याओं का नहीं। विद्या और कर्म में भी कर्म का ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्यास से पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शांत होता है। ज्ञान का विधान भी कर्म को साथ लेकर ही है, अतः ज्ञान में भी कर्म विद्यमान है। जो कर्म से भिन्न कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है वो दुर्बल है, उसका कथन व्यर्थ है। ये देवता कर्म से ही स्वर्ग लोक में प्रकाशित होते हैं। हाँ, क्या हुआ? अभी देर है, हैं? आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये देवता कर्म से स्वर्ग लोक में प्रकाशित होते हैं। वायु कर्म को अपनाकर संपूर्ण जगत में विचरण करते हैं। सूर्यदेव आलस छोड़कर कर्म के द्वारा दिन रात का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। चंद्रमा भी आलस्य त्याग कर महीना पक्ष नक्षत्रों का योग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अग्निदेव आलस्य रहित होकर प्रजा के लिए कर्म करते हुए प्रज्वलित होकर जलाते रहते हैं। पृथ्वी देवी भी आलस्य त्याग कर बलपूर्वक विश्व के भार को ढोती है। ये नदियाँ भी आलस्य छोड़कर संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करती हुई जल बहाया करती हैं। जिन्होंने देवताओं में शीर्ष स्थान पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था वे महातेजस्वी इंद्र भी आलस छोड़कर मेघ गर्जना द्वारा आकाश और दिशाओं को गुंजाते हुए समय समय पर वर्षा करते हैं। इंद्र ने सुख और मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग करके सत्कर्म के बल से ही देवताओं में ऊंची स्थिति प्राप्त की। उन्होंने सावधान होकर सत्य धर्म इंद्रिय संयम सहिष्णुता समदर्शिता और सबको प्रिय लगने वाले उत्तम बर्ताव का पालन किया था। इन समस्त सद्गुणों का सेवन करने के कारण इंद्र को देव सम्राट का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बृहस्पति जी ने भी नियम पूर्वक संयत चित्त होकर सुख का परित्याग करके समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इसी सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने देवगुरु का सम्मानित पद प्राप्त किया। आकाश के सारे नक्षत्र सत्कर्म के प्रभाव से परलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। रुद्र आदित्य वसु और विश्वदेव भी कर्म से ही महत्व को प्राप्त हुए हैं। यमराज विश्रवा के पुत्र कुबेर गंधर्व यक्ष और अप्सराएं भी अपने अपने कर्म से ही स्वर्ग में विराजमान हैं। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मचर्य कर्म का सेवन करने वाले महर्षि भी कर्म के बल से ही परलोक में प्रकाशमान हैं। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और संपूर्ण लोकों के इन सुप्रसिद्ध धर्मों को जानते हो। तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी हो तो भी तुम कौरवों के स्वार्थ के लिए क्यों वाणी का जाल फैला रहे हो? राजाधिष्ठिर का वेद शास्त्रों के साथ स्वाध्याय के रूप में सदा संबंध बना रहता है। इसी प्रकार अश्वमेध और राशु आदि यज्ञों से भी इनका सदा लगाव है। ये धनुष और कवच से संयुक्त हैं। हाथी घोड़े आदि वाहनों रथों और अस्त्र शस्त्रों की भी इनके पास कमी नहीं है। ये कुंती पुत्र यदि कौरवों का वध किए बिना ही अपने राज्य की प्राप्ति का कोई उपाय जान लें तो भीमसेन को सद्व्यवहार में लगाकर तुम धर्म रक्षा का पुण्य संपादित करेंगे, तुम ऐसा समझ लो। पांडव अपने बाप दादों के कर्म छात्र धर्म में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो इनकी वो मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम शांति धारण करना ही ठीक समझते हो तो बताओ युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी वही बात सुनने को तैयार हूँ। संजय, तुम पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के विभाग और उनमें से प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कर्म को देख लो, फिर पांडवों के कर्म पर दृष्टि डालो। तत्पश्चात जैसा तुम्हारा विचार हो उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निंदा करो। ब्राह्मण अध्ययन यज्ञ और दान करे, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करे, शिष्यों को पढ़ावे और यजमानों के यज्ञ करावे अथवा शास्त्र विहित दान स्वीकार करे। इसी प्रकार क्षत्रिय काफ़ी बड़ा है, आप लोग प्रसाद ले लो उसके बाद हाँ उसके बाद इस अध्याय को पूरा करते आप लोग जाओ प्रसाद लेने।
प्रसाद लेकर
जाओ 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 जाओ। चलो चलो
ये रुकना रुकना